हज़रत उस्मान का भी एक बहुत प्यारा अमल था। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आए और कुछ ज़रूरत का इज़हार किया। आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाइए, उस्मान का घर है, उनसे जाके सवाल करें। खैर, ये गए, अभी घर से दूर ही थे तो आवाज़ आ रही है, उस्मान अपनी बीवी से झगड़ रहे हैं इस बात पे कि जब एक चिराग से ज़रूरत पूरी हो सकती थी तो तुमने दो क्यों जलाए। आज की ज़बान में कह लेंगे जब एक बल्ब काफ़ी था तो दो क्यों जलाए। बस ये सुनकर ये शख्स वापस आ गए कि नाउज़ बिल्ला, ये शख्स तो शायद छोटे दिल का मालिक है कि एक फालतू बल्ब जलाने पे बीवी से झगड़ रहा है, तो ये मुझे क्या देगा, नहीं मांगा, वापस आ गए। क्या हुआ, दिया? कहा नहीं, अल्लाह के नहीं, मेरा ख्याल है वो मुझे नहीं देंगे। कहा नहीं, जाओ मांगो। अच्छा, फिर गए, सलाम की, दुआ दी, खैर बाहर आए, सुनाए कैसे है? बस ज़रूरतमंद था, अल्लाह के नबी ने भेजा। अच्छा, मैं तो अंदर जाके अशरफियों की थैली, गोल्ड कॉइन्स की थैली ला के पकड़ा दी। अब नहीं रह सका। का ये बताएं कि अभी थोड़ी देर बाद तो ये सीन हो रहा था, तो अब आपने, मैंने एक दफ़ा सवाल किया, आपने सोने के सिक्के दे दिए। कहा देखो भाई, वो जो मामला था ना, वो मेरे नाम पड़ता, जो मेरे घर चिराग जलता उसका हिसाब मुझे देना पड़ता, ये मेरे हिसाब में पड़ता, और ये मैं अल्लाह को दे रहा हूँ। ये नज़रिया कर लें, अपनी ज़ात पे लगाते हुए 10 दफ़ा सोचें। एक चीज़ पहले से मौजूद है, नहीं लेनी दूसरी, या तो ये पहले वाली किसी को दे दूं, चलो उसको भी खुशी होगी, उसके लिए नहीं होगी, मैं फिर नहीं ले लूं। एक नया लें तो एक पुराना निकाल दें, फिर आपकी अलमारियां भी हल्की रहेंगी, फिर हमेशा ही आपके पास नए कपड़े रहेंगे, शौक कैसे पूरे करें। लेकिन ये जो हम गोदाम बना लेते हैं ना घरों को, हमारी जगह ही नहीं रहती घर में, इतना सामान होता है। वो कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने गुल खिले मेरे आशियाने में, कि मेरी जगह ही नहीं रही उस घर में, कि भाई इधर फूल ही इतने आ गए, अब तुम अपना घोंसला उठाओ और कहीं और जाओ। कोई मरता है तो आप देखा करें पीछे उसका सामान कितना है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक गाइडलाइन वाजे है। मैं खुलासा कर देती हूँ, ज़कात की या सदके की रूह हमदर्दी है, दूसरी बात है कि दूसरों को अपने बराबर समझें, तीसरी बात ये समझें कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा है ये किसी दूसरे का है, फिर अगली बात ये समझें कि मैंने अपने ऊपर उतना ही लगाना है जितनी मेरी औकात है। मैं अगर बहुत नेक हूँ, बहुत अच्छे काम करती हूँ, मैं अल्लाह का बहुत कुर्ब रखती हूँ, मैं बहुत अल्लाह की पसंद के काम करती हूँ, जितना मर्जी लगाएं खुद पे, लेकिन अगर पैन के इस्तेमाल करके अल्लाह को नाराज़ ही करना है तो हिसाब के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी औकात को समझने वाला बना दे। फिर इसके बाद तीसरी चीज़, हज। हज की क्या रूह है? इसी तरह हज के बारे में फरमाया, जिसने हज किया, फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज। हज में कोई बेहयाई, कोई झगड़ा, कोई नाफरमानी की बात नहीं होगी, अगर होगी तो फिर हज नहीं होगा। सूरत बकरा 197 इन्होंने लिखा है। इसमें तीन चीज़ें हैं, रफस बेहयाई की बात, फुसूक अल्लाह की नाफरमानी, जिदाल आपस का झगड़ा। ये तीन चीज़ें हज में नहीं होंगी। फरमाया, जिसने हज के दौरान ये तीनों चीज़ें नहीं की, वो हज से यूं लौटा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। तमाम इबादात के बारे में यही फरमाया, जिसने खलूस नीयत से 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज के दौरान अपने आप से गुफ्तगू नहीं की, वलम युहद्दिस नफ्सहु। क्या मतलब? वा और लम नहीं, यो हदिस उसने बातें की, नफ्सहु अपने नफ्स से, दिल से बातें नहीं की, यानी नमाज में पूरी फोक पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रही, तो अल्लाह ताला इसके गुनाह मुआफ कर देते हैं। बात वाज़े? हज ने क्या सिखाया मुझे आपको? हज ने हमें सिखाया कि सेल्फ कंट्रोल और यूनिटी। इस पे एक लेक्चर भी है, मुझे याद आ रहा है, सौमे रमज़ान नाम की एक बुक है जो रमज़ान की तैयारी में भी पढ़ाते हैं। उसका पहला ही टॉपिक है कि इस्लाम के जो बुनियादी रिचुअल्स हैं उनकी असल क्या है, तो उसमें ये बातें मज़ीद डिटेल से भी आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ खुलासा क्या है, हज में नागवार हालात में भी पुरसकून रहना, वहाँ जाके और ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, वो लोग भी लड़ पड़ते हैं जो कभी नहीं आमतौर पर लड़े, क्योंकि हालात ही इतने अबतर होते हैं, सफ़र, गर्मी, भूख, प्यास, रश, इधर फंस रहे हैं, उधर जा रहे हैं, घंटों के एतबार से बसों में बैठते हैं, यही सबर है, यही जिंदगी का कोर्स है कि आपने अपने आप को इन चीजों से बचाना है। अब जो एक दफा ये करके आ जाएगा, क्या उसके बाद उसको एक गाइडलाइन नहीं मिल जाएगी? लेकिन हमारा क्या हाल है, हर साल भी हज कर रहे हैं और हज के बाद अल्लाह अकबर, यहाँ का तो हाल मुझे नहीं पता। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश एयरपोर्ट्स पे, जिस दिन हम उतरे हैं लाहौर, वहां इतना रश था कि मुझे घबराहट होने लगी। और जाएं भी आप नॉर्वे से, जहां लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है, खाली एयरपोर्ट होते हैं, मैंने कहा हुआ क्या है, सारा शहर ही हमें लेने आ गया, और फूल पकड़े हुए हाथों में। एयरपोर्ट का जो फ्लोर था ना, वो फूलों से भरा भरा। बाद में पता चला कि कोई उमरे की फ्लाइट आई हुई है, लोग गाड़ियों में बैठे हुए, और खुली जो नहीं होती, खुली गाड़ियां क्या वैन कहते हैं, तो पूरे पूरे घरों के घर आए जी के उमरा करके आए। तो मैंने कहा ये सुबह फजर पढ़ने वालों को भी ऐसे ही लेने आए थे? हम हज उमरे से आने वालों को तो बड़े शौक से लेने जाते हैं, क्या नमाज पढ़ने वालों के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं? ये सिर्फ हमारी एक नासमझी की बात है। तो रूह के साथ उमरा करें, फिर देखें। फिर उसके बाद खुलूस से अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज ही पढ़ ले, कि इसमें अपने आप से गपशप ना करें। गपशप क्या है? वलम युहद्दिस नफ्सहु, तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देते हैं। अच्छा, हम कैसे खुद से गपशप करते हैं? सारी प्लानिंग्स, आज रात क्या पकाना है, अच्छा फ्रिज में टमाटर है, अच्छा वो धनिया है, अच्छा चावल पकाएं कि रोटी पकाएं, कल क्या पकाया था, ये गपशप होती है। हमें नमाज के अलावा वक्त ही नहीं मिलता फारी बैठने का, हर वक्त तो हम मसरूफ होते हैं, लोग हमारे सर पे सवार होते हैं, तो हम कहते हैं आप नमाज में जरा मुझे बातें करने दो। अक्सर लोग कहते हैं कि जो चीज गुम जाए उसको ढूंढे कैसे, दो नफिल शुरू कर दो, पहली रकत में याद आ जाएगा चाबी कहाँ रखी थी, ऐसा होता है? लयर फील करते हैं ना। तो जिस तरह की नमाज अब आपने पढ़नी शुरू की है, इंशाल्लाह ये गपशप कम हो जाएगी। फरमाया मन साम रमदान ईमानम व इख्तसाबन गुफिर लहू, ये गुफा को फा की जेर कर लीजिए, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही व मन काम लैलतुल क़द्र ईमानम व इख्तसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। दोहराइए इसको मेरे साथ, मन साम रमदाना ईमानम व इख्तसाबन غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه। जिसने ईमान और अल्लाह से अजर पाने की नीयत से रमजान के रोजे रखे, इसके गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। जिसने ईमान और एहतसाब से लैलतुल क़द्र में क़याम किया, इसके सारी ज़िंदगी के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। इमेजिन करें, और क्या चाहिए? अमल एक है लेकिन उसकी तासीर कितनी ज़्यादा। शर्त इसमें क्या है? ईमानम व एहतसाबन। तो हर अमल करते हुए अपना एहतसाब करें, हिसाब लें, कैसी हूं, क्या है, इससे क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, किस तरह से मैं इन सारी चीजों में लेकर अपने आप को चलूंगी। तो आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह ताला आदत होगी। और अब आपको कम से कम ये सब कुछ सुनने से ये फीलिंग तो आ रही है ना कि गौर व फिक्र करना चाहिए। जो काम करें सोचें, गौर करें, अल्लाह ने क्यों 5 ही नमाजें दी, क्यों फजर का वक्त इतना जल्दी रख दिया, आजकल ईशा इतनी लेट क्यों होती है, सोचा करें, हिकमत क्या है, इसके पीछे फायदा क्या है। तो जब आपको सोचने की आदत पड़ेगी ना, अल्लाह ताला खुद ही आपका दिल खोल देगा। वमें युमिन बिल्लाही यहदी कल्बा, सूरत तगाबुन में आता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है ना, अल्लाह उसके दिल को सुझा देता है, हिदायत दे देता है उसके दिल को। अब आगे टॉपिक देखते हैं, हकीकी जिंदगी। हकीकी ज़िंदगी तो ये एक तरबियती कोर्स है, और इसमें अहम बात यह है कि इंसान انسان عبادت کی شکل و صورت تک ہی محدود نہ رہے بلکہ اس کی حقیقت اور روح کو پالے۔ سورۃ انفال آیت 24 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں، اور ایسی دعوت دیں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے اسلوب کیا آتا ہے، سٹائل پر غور کریں تو اس میں بڑے حیران کن القاب نظر آتے ہیں۔ القاب کے لقب کی جمع، ایڈجیکٹیوز۔ مثلا قرآن بعض انسانوں کو لکڑی کے چوکھٹے اور چلتی پھرتی لاشیں قرار دیتا ہے۔ یہ کہاں آتا ہے؟ ریفرنس لکھ لیں سورہ منافقون میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہم خشب مسندۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب منافق آتے تھے نا، تو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے لیئر موڈ میں بیٹھتے۔ اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر پیش کر دیا کہ یہ تو خوبصورتی کے لیے لگی ہوئی لکڑی ہے دیوار کے ساتھ، جو فائدہ کوئی نہیں دیتی۔ یعنی منافق ہوتا ہے وہ بس اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس فرنیچر کی لکڑی ہے، فائدہ دیتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمائے، ان کے دل ہیں مگر غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ سورۃ الاعراف میں بھی یہ آیت موجود ہے، اور بھی ایک آدھ جگہ پہ تھوڑے فرق سے سورۃ طٰہٰ میں بھی غالباً اسی سے ملتے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایسے لوگ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب دل سے غور کا کام نہ لیا جائے، آنکھوں سے اللہ کے راستوں پہ تدبر کے ساتھ نکلنا نہ دکھا جائے، کانوں سے حق بات نہ سنی جائے، پھر انسان کے اور جانوروں کے عذاب میں فرق نہیں رہتا، اور جو لوگ کام نہیں لیتے وہ مرد ہیں۔ دیکھیے، آپ کے کاؤنٹر پہ 10 مشینیں رکھی ہوں، چلے ایک بھی نہ، تب کیا کہیں گے؟ بیکار ہیں، مرد ہیں۔ چاپر کھولیں وہ نہ چلے، بلینڈر کھولیں وہ نہ چلے، مائکرو ویو کھولیں وہ نہ چلے، تو رکھی ہوئی کتنے کو دن برداشت کریں گے؟ تب تک رکھیں گے شاید جب تک اگلی نہ آ جائے۔ آپ کہیں گے خام خواہ جگہ رکی ہوئی ہے۔ کچھ انسان حقیقت میں دنیا میں اسی طرح کے بیکار لوگ ہیں، چوکھٹوں پہ لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح، وہ صرف زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ایک دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت پہ لبیک کہو، تمہیں وہاں سے زندگی ملے گی۔ اور علامہ اقبال نے اس آیت کو بہت خوبی سے بیان کیا، خود بدانی قدر تن از جاں بوت، قدر جاں از پر توے جانا بوت۔ کہتے ہیں کہ اتنی بات تو تم جانتے ہو کہ تن بدن کی قیمت جان سے ہے، اور یہ بھی جان لو کہ جان کی قدر و قیمت پر تو جانا اور محبوب کی محبت کے دم قدم سے ہے۔ تو جسے محبوب کی محبت نصیب ہو گئی، اس کی جان میں قدر و قیمت آ گئی، ورنہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ بات سمجھے؟ انسان گوشت پوست کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، جان ہے تو رشتے بھی ہیں، جان ہے تو نام بھی ہے، جان ہے تو پیار بھی ہے۔ جان نکلی، رشتے کیسے ختم ہوئے، نام کیسے ختم ہوا، مردہ، میت۔ جب جسم سے جان نکلتی ہے تو جسم بیکار مٹی کا تودہ بن جاتا ہے، اس کو مٹی میں دفن کراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک دعوت دیتا ہے، استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اس کی تفسیر آپ سنیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے، کیا کیا اس کی 3 مختلف معنی ہیں۔ جہاد کی دعوت کو قبول کرو، سنتوں والی زندگی کو قبول کرو، علم کی دعوت کو قبول کرو، عمل کے مواقع پہ لبیک کہو۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مانتے کوئی نہیں ہے، اور پھر کھاتے پیتے اسی کے دیے ہوئے میں سے ہیں، تو وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا، آ کے نہ جانے تجھ بن کب سے، روح ہے لاش ہے جسم ہے مدفن۔ یعنی کہ میرا جسم اس لاش کی طرح جس کے اندر روح نہیں، یعنی روح ہے لاشا، روح ایک لاش ہے، جسم ہے مدفن۔ اس جسم کے اندر روح کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے، یہ مراد لے لیں۔ اگر ہم اس دعوت پر لبیک نہ کہیں تو ہماری روح لاش بن جاتی ہے اور جسم اس کی قبر بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتے۔ जो अल्लाह के हुक्मों पे जिंदगी बसर नहीं करते। जिगर का ही एक और शेर है, मेरा कमाले शेर बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। यानी कहता है कि मुझे अल्लाह से इतनी मोहब्बत है ना कि इस मोहब्बत की वजह से मेरी बात में असर आ गया है, वरना मेरे अंदर खूबी कोई नहीं है। और अलामा इकबाल क्या कहते हैं, शब पेशे खुदा बगर इस्तम जार, मुसलमाना चरा खवारंद दा जारंद, निदा आमत नमी दानी के ई कौम, दले दारंद ब महबूबे नदारंद। क्या कहते हैं अलामा इकबाल के, रात में अल्लाह के हजूर बहुत रोया, जारो कतार रोया, और अल्लाह ताला से एक चीज पूछता रहा कि ये मुसलमान क्यों जारों जबू हो गए, यानी इनके हालात कितने बुरे हो गए। और नोट कीजिए, 18 सेंचुरी की शख्सियत थे, आज से 200 साल पहले तकरीबन, उस वक्त मुसलमानों के हालात पे अलामा इकबाल रात को रो रहे हैं, आज होते तो कब रोते, सारा वक्त ही रोते, हालात बिगड़े हैं बने नहीं हैं। खैर, इस आहोजारी का जवाब क्या आया, तो ये आवाज़ आई कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कौम, ये मुसलमान दिल में मोहब्बत का दावा तो रखते हैं लेकिन महबूब से सही ताल्लुक नहीं रखते। झूठ है कि सच, किसी से भी मोहब्बत हो और उसकी दलील ना दें, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, वो एक बाजारी चीज़ बन जाती है। तो याद रखिए कि ताल्लुक बिल्ला ही असल में अल्लाह से मोहब्बत का नाम है। ताल्लुक बिल्ला पर तो जाना तो महबूब से ताल्लुक का नाम है। यानी जब आप एक लफ्ज़ बोलते हैं ना ताल्लुक बिल्ला, तो बस लिख लीजिए अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरत माईदा आयत 54, असल में प्यारे लोगों के तस्करे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति बिकौमि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अहले ईमान, तुम में से जो कोई अल्लाह के दीन से मुर्तद होता है, मुर्तद मीन रद्द करता है, रिजेक्ट करता है, दीन को छोड़ता है, तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। यानी ऐसे बोन मुस्लिम्स की अल्लाह को आज बिल्कुल परवाह नहीं है जो अल्लाह के दीन पे अमल ही नहीं करते। देखिए, ये शरीयत साजी की ज़रूरत क्या थी अगर आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको लाना नहीं है? ये सूरत मायदा में इतने अहकामात की ज़रूरत क्या थी, इतनी डिटेल से, शराब की हद से लेकर, चोरी की हद से लेकर, छोटे बड़े कामों का जिक्र की। ये कुरान तो बिल्कुल दो चार सूरतों का मजमुआ होता अगर अमल की बातें निकाल दें आप, राइट के रॉन्ग। अल्लाह ने इतने प्यार से, इतने लाड से आयतें उतारी, आज हम मुसलमान उसको दिल की नोक पे भी नहीं लेते। शादी को लेकर, जिंदगी को लेकर, कमाने को लेकर, खाने को लेकर, हम कहते इसकी जरूरत नहीं, तो अल्लाह कहता गेट आउट, आई डोंट नीड यू। तुम आज निकले, मैं तुम्हें आज ही फारिग करता हूं, मैं यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही, जाओ, तुम रूठे हम छूटे। अल्लाह को क्या परवाह है फिर ऐसे मुसलमानों की? आज लगता है कि अल्लाह को मुसलमानों की परवाह है? जो आज हम मुसलमानों के दुनिया में हालात हैं, क्या लग रहा है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन रहा है? तो अल्लाह क्या करेगा फिर ऐसे मुसलमानों को, तो इधर उधर करके मरवा देगा। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह इन करीब तुम्हारी जगह और कौम ले आएंगे। इनकी ये सिफात होंगी, इसको 1 2 3 करके जरा ढूंढें कहाँ हैं आज ये लोग। क्या फर्स्ट थिंग, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे। पहली सिफत मोहब्बत रखी है दोनों तरफ, डबल वे, तुम भी मुझसे करो मैं भी तुमसे करूंगा। दूसरी खूबी, मोमिनीन के सामने वो बिछ बिछ जाते होंगे, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, यानी उनको ईमान की बुनियाद पे लोगों से मोहब्बत होगी, खानदान की नहीं। और तीसरी, आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों से सख्ती से पेश आएंगे। कैसी सख्ती? जुबान की बदतमीजी नहीं, असूलों में सख्त होंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनके नज़रियात को नहीं मानेंगे, उनके रंग ढंग को नहीं कबूल करेंगे। फिर अगली खूबी, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेंगे। जोहद कहते हैं मेहनत को, ये जो जिहाद किताल के मानों में आता है ना, तो वो मेहनत की आखिरी हद होती है, कि तलवारें खुलती हैं। हालांकि दीन पे अमल से ही जिहाद का आगाज़ शुरू हो जाता है, बल्कि दीन के इल्म से ही। आप इल्म लेने लगते हैं तो आप देखेंगे कि उसी वक्त ही मुखालफतें शुरू हो जाती हैं, लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं, और एंड क्या होता है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद वला तखाफून लौमतलाइम, और वो किसी की मुखालफत से नहीं डरेंगे। बात वाजे, किसी की बातों से डर कर दीन पे अमल नहीं छोड़ेंगे। आज लोग क्या कहते हैं, लोग बातें करेंगे, हिजाब लिया तो बातें करेंगे, नकाब लिया तो कैद कर देंगे, दाढ़ी रख ली तो रिश्ता नहीं होगा, शलवार टखनों से ऊपर कर दी तो लोग हमें बेवकूफ़ कहेंगे। ऐसे ही सोचते हैं ना, जबकि अल्लाह सुबहान तआला तो कुछ और ही बातें कहते हैं। फिर ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे वो चाहे देता है। अल्लाह ताला बड़ा इल्म रखने वाला और जानने वाला है। कुल कितनी सिफात है, 6। बस दीन की असल रूह हुब्बे इलाही है, इसलिए कि लौटना इसी की तरफ है, मकसद वही है, मंजिल वही है, हदफ वही है, यानी महबूबे हकीकी। क्या पीछे जुमला बोला था, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। नमाज, रोजा, जक़ात और हज का सारा तरबियती कोर्स सीधा उसी की तरफ ले जाता है। अब ये हम खुद पूछें कि हमारी ये नमाजें, रोजे, जक़ात, हज हमें अल्लाह का कितना कुर्ब दे रही हैं। फरमाए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाते हैं इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला से शदीद तरीन होती है। सूरत बकरा 165। सूरह कहफ में फरमाया, जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार हो इसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी और को शरीक ना करे, ना किसी की मिलावट करे। सूरह कहफ 110 आखिरी आयत है। क्या पता चला कि अल्लाह से ताल्लुक में किसी दूसरे को ना लाए। सूरह इंशिकाक आयत 6 में आता है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीह, ए इंसान तू तकलीफें उठा उठा कर अपने परवरदिगार की तरफ बढ़ रहा है। कैसे? आप देखिए, इंसान दुनिया में आता है ना तकलीफ के साथ आता है, माँ भी मुश्किल में होती है तो बच्चा भी मुश्किल में होता है, सारी जिंदगी तो तकलीफ है। फिर देखिए, बच्चे जब दूध पीते हैं ना तो बाद में उनके होंठों पे पसीना आ जाता है, जोर लगता है उनका, फिर दांत निकलते हैं तो रोते हैं बच्चे, माँ कहती इसके दांत निकले, फिर चलते हैं तो गिरते हैं, फिर स्कूलों के मसले, रोते हुए सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, है ना, सारी जिंदगी मुश्किल मुश्किल मुश्किल। क्यों? इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। मेरी आपकी जिंदगी के ये हर मरहला जिसे हम गुजर गए और जिससे गुजरे, ये किस लिए? कि जल्दी से जिंदगी का सफर खत्म हो, फमुलाकी तो मुलाकात हो जाए। जैसे अमेरिका से कोई निकलता है पाकिस्तान के लिए, कितना रास्ते में थकता है, खपता है, कितने स्टॉप्स, कितनी जगह चेकिंग्स, कितनी जगह वजन उठाया। नीयत क्या है? पाकिस्तान जाकर प्यारों को मिलना है, फिर वो सारी थकन दूर हो जाती, फिर लोग साल बाद फिर आ जाते हैं, है ना। जब मुझे आपको अल्लाह से प्यार होगा ना, तो हम जिंदगी का हर दुख दर्द ये सोच कर सह लेंगे कि हमने अल्लाह सुबहाना ताला का दीदार करना है। ये है हुब्बे इलाही, अल्लाह के दीदार और इसके कुर्ब की मंजिल। और आप ये बात नोट कर लें, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो अल्लाह का कुर्ब है। जन्नत से भी बड़ी नेमत है, जन्नत अल्लाह ताला से मुलाकात की जगह है। असल चीज जन्नत में अल्लाह से मुलाकात है। और किस हाल में? किरा दिया तम मर्दिया, वो तुमसे राजी, तुम उससे राजी। अब आप कोई बात करें, कैसे अल्लाह की मोहब्बत लेकर आए? ये जिंदगी का हुसन है, खूबसूरत जिंदगी अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर मुमकिन नहीं है। किसी से मोहब्बत कब होती है? उसकी बात सुने, उसका फन देखें, उसका कुर्ब हो, उसकी पसंद नापसंद को देखें, हम मुतासिर हो जाते हैं ना लोगों से। तो अल्लाह से मोहब्बत का फिर रास्ता क्या है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब, इसको पढ़े बगैर सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती। बस एक तसव्वुर था अल्लाह का, खौफनाक सा, रूठा रहता है, नाराज रहता है, गुस्सा करता है, आग में डालता है। कुरान पढ़ा तो पता चला कि वो तो आपका रास्ता देखता है। वल्लाहु यदूकु मिला दारुस्सलाम। जी कोई बात जो क्लियर ना हो या आप मजीद कुछ कहना चाहें, जी सभी आप शेयर करें।
उस्ताद जी, मैं ये सोच रही थी कि वाकई अल्लाह ताला की हर हुक्म पर, जितनी हम ये वादात में से देख रहे हैं, अगर एक एक पर इन पे गौर करें, तो इसमें से तनकीद की नज़र से ही चाहे गौर करें, तो इसमें बहुत कुछ निकलता है जो बहुत अमल की बातें हैं।
यानी
यानी
रूह
अल्लाह
है।
ताला हर हाल में हमारी बेहतरी करता है।
जी आप।
मैं तो ये अपने से रोई हूँ कि पहले हम मुसलमान थे, कलमा पढ़ते, तो कैसे भी बहुत थे कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी को प्यार करते हैं, पर उस तरह नहीं जब तक, जब से कुरान पाक के साथ जुड़े हैं ना, वो हकीकी प्यार हुआ है, नज़र आया अपने आप में प्यार।
और ये नज़र ही तब आता है
जी
जब ये किताब जिंदगी में आती है। अब देखिए सहाबा किराम क्या थे, उमर फारूक को किस चीज़ ने बदला? सूरत आहा, सूरत अल हाका, हत्ता कि वो लोग जो इस्लाम नहीं भी कबूल कर सके वो भी कुरान से प्यार करते थे। तो हम तो खुश किस्मत हैं, खुद को चुटकी काट के कहें अल्लाह तूने मुसलमान घर में पैदा किया, कहाँ धक्के खा रही होती। और बंदा जो कर रहा होता है ना वो उसको ठीक लगता है। कुफर और शिर्क जो है ना बंदे की मत मार देता है, अकल उल्टी हो जाती है। जी आप नशीन।
जी उस्ताद जी, मैं ना ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि जिस तरह पहले कुरान से नहीं जुड़े हुए थे, तो ईमान को मैं समझती थी कि एक बॉक्स में बंद है, लेकिन अब जब ईमान की इतनी हकीकत के बारे में पता चला, तो लगता है कि ईमान बोलता है, चलता है, कभी दौड़ता है, तो ये चलती फिरती चीज़ है, इसको बस कहीं पढ़ा नहीं हुआ है।
जी ईमान जिंदा चीज़ है। पे मिसाल दी थी आपको फूलों की, जिंदा फूल से खुशबू भी आती है, वो मुरझाता भी है, उसकी पत्तियां भी टूटती हैं, उसका रंग भी बदलता है, कभी जोश भी आ जाता है, कभी कली फूल बन जाती है। और प्लास्टिक के फूलों को जैसा रखें वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये तो बाजारी ईमान है, ये तो आर्टिफिशियल ईमान है जिसको लेकर हम दुनिया के बाजार में निकलते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे। जी फैजा जी। जी मोहब्बत रास्तों को आसान कर देती है। ये जो पाकिस्तान का सफ़र होता है ये मोहब्बत का ही सफ़र होता है ना। आपको लगे कि कोई आपका मंतज़िर ही नहीं है, जाऊंगी तो कोई मिलेगा ही नहीं, कोई खुशी नहीं होगी, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। मोहब्बत रास्तों को आसान करती है। ये नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, जागना, अल्लाह के लिए मेहनत करना, ये आसान हो जाता है कब? जब उससे मोहब्बत होती है। ठीक है।